ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग में स्थानांतरित करने का निर्णय मिजोरम के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कल आइजोल में बताया कि यह कदम आइजोल शहर के लिए नया अध्याय और राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र में पर्यटन से प्रौद्योगिकी, खेल से अंतरिक्ष और कृषि से उद्यमिता तक प्रत्येक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले फिटनेस और वेलनेस उत्सव का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली तथा मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्साकूद, क्रिकेट बॉलिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग तथा पंजा लड़ाना जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से तथा अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से राष्ट्रीय राजधानी में आरंभ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह शुरू करने की घोषणा की है। ये समूह पिल्लई पक्कम और मनल्लूर में 11 अरब 12 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। कल चेन्नई में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की नई विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि 15 एकड़ में ये इकाई तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने और 5 खरब के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का बाजार हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लिए सरकारी सहायता में वृद्धि हुई है तथा राज्य को 60 अरब रूपये से अधिक के रेलवे बजट का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना की बदौलत हम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि तमिलनाडु इस वृद्धि का प्रमुख लाभार्थी है। तेलंगाना में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 64 सदस्यों ने पुलिस महानिरीक्षक मल्टी जोन 1 चंद्रशेखर रेड्डी और भदाद्री कोठागुडेम जिले के पुलिस अधीक्षक रोहित राज के समक्ष कल स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में समर्पण करने वाले माओवादियों की कुल संख्या 122 हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया को बताया कि समर्पण करने वालों में 48 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समर्पण करने वाले माओवादियों को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रूपये दिए जाएंगे। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की रही और अनुमान है कि 2026 तक ये 47 खरब डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार 2028 में भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था 57 खरब तक बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये असाधारण बढ़ोतरी संयोग से नहीं बल्कि वर्षों के दूरदर्शी नेतृत्व और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। पार्टी ने कहा है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने औद्योगिक नवाचार की लहर को सक्षम बनाया है जिससे गांव विनिर्माण केंद्रों में तथा शहर संपन्न आर्थिक केंद्रों में बदल गए हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में ये लगातार तीसरी हार है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 44 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।